हसीन बाबा तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां
शांति। तुम सा हसीन बाबा किससे तुलना करूं तुम्हारी। संसार में व्यक्तियों की तुलना किसी से की जा सकती है, ब्राह्मण परिवार में भी तुलना की जा सकती है, लेकिन बाबा की तुलना किसी से की जा सकती है। जो संसार में अतुलनीय है, जिसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, वो हमारा बन गया है। माना हमारा दोस्त ऐसा है जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। हमारा बाप ऐसा है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, हम उसकी रचना है। और कौन सी रचना? पहली रचना ब्रह्मा मुखवंशावली, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ रचना है, संसार की आधार मूर्त है, इक्वल टू बाप समान, जो बाबा हमें अपनी उपाधि भी दे देते हैं ना। एक मुरली में है, तुम मास्टर परमात्मा हो। तो स्वयं भगवान ने हमको इतना बड़ा टाइटल दे दिया। संसार में तो कहा जाता है सभी के अंदर भगवान है, लेकिन वो कहने मारते हैं, अनुभव तो कुछ है नहीं है उनको। केवल कहने तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन हम बच्चे बाबा का वो अनुभव करते हैं कि सचमुच वो हमारे अंग संग रहता है। उसका जैसे दिल तक रिजर्व कर लिया है। आज की मुरली में एक महावाक्य है के बाप दादा के दिल तख्त को रिजर्व कर लिया है। कैसे महावाक्य अद्भुत है। ऐसे महावाक्य हो जो संसार में कहीं नहीं मिलते हैं। ऐसा ज्ञान है जो कहीं भी नहीं है। कितना नशा होना चाहिए इसका। संसार में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, महामंडलेश्वर हैं, इतना पढ़ाई पढ़ने के बाद भी वो हरदम दूर रहे, लेकिन बाबा ने हम सब बच्चों को अपने दिल में बसा लिया, दिल तख्त पर बसा लिया, रख दिया। बाबा कहते हैं कोई पूछे भगवान कहाँ है तो क्या कहेंगे, मेरे दिल में है। तो प्रैक्टिकल में अभी संगम पर हम बच्चे अनुभव करते हैं। तो आज की मुरली पर चर्चा करेंगे और फिर उसमें किस बातें देखेंगे, उड़ती कला में, ब्राह्मण जीवन में उड़ती कला में कैसे आगे जाएं। मुरली को रिपीट करना बड़ी बात नहीं है, वो तो अगर स्कूल के बच्चे भी याद करेंगे उसको हम, तो वो भी रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको धरातल पर अपने जीवन में लाते हैं, हकीकत में, कि सचमुच ये ज्ञान हमारे स्वरूप में समाता जा रहा है, उसके लिए बाबा कहते मेहनत है, पुरुषार्थ है, वो वास्तविक पुरुषार्थ है, बाकी दिखावे का नहीं है। ये तो प्रैक्टिकल में इसमें झुक झुक मर मर सिख सिख, जो दादियों के महावाक्य हैं, और उसमें बहुत मजा है। अगर हम ब्राह्मण जीवन में प्रख्यात होने की कोशिश की, अर्थात अपनी आत्महत्या, सीधी सी बात है, और ये संसार के महान विभूतियों के महावाक्य भी हैं, इसलिए इस पुरुषार्थ का जो सुख है, इसका जो अतीन्द्रिय सुख का जो अनुभव है, उसके लिए खुद के स्तर पर ही मेहनत करनी पड़ती है। आजकल माया के बड़े अनेक प्रकार के रूप हैं। बाबा कहते हैं जैसे जैसे तुम इस ब्राह्मण पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, माया के सूक्ष्म रूप प्रहार करेंगे। इसलिए भावना में नहीं बहना है, ज्ञान की समझ चाहिए, बैलेंस चाहिए उसका। भावनावश हम बाबा बाबा करते रहे, बाबा सब ठीक कर देगा, बिल्कुल नहीं। उसने हर चीज की समझ दी है, नॉलेज दी है। संसार में भी अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं तो केवल भावनावश उसके सामने वो पास नहीं होते, पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। केवल उसका पाठ पूजा करके आ जाए तो कुछ नहीं होगा। तो भावना और ज्ञान दोनों की, दोनों का संतुलन चाहिए, बैलेंस चाहिए। जितना ज्ञान को हम प्रैक्टिकल में समझेंगे, अप्लाई करेंगे, तो भावनाएं भी हमारी शक्तिशाली होती जाएंगी। बिना ज्ञान के भावनाएं भी रुखी सुखी होंगी, अल्पकाल की होंगी, अल्पकाल की प्राप्तियों की अनुभूति होगी लेकिन सदाकाल नहीं होगी। इसलिए हर बात की समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो आज की मुरली सभी ने सुनी है ना, क्या क्या सुना आज? फिर इधर से शुरू करो, एक एक पॉइंट सारे बताओ। प्रकृति का भी ध्यान रखना है और बिना मेहनत के उड़ती कला हो नहीं सकती, और कुछ भी बोलो, ज्ञान के अनुकूल ही होगा सारा वो। ज्ञान युक्त भावना स्नेह युक्त योग, और डबल नॉलेजफुल आत्मा और शरीर की, और प्रकृति ड्रामा, फुल नॉलेज अर्थात आत्मा परमात्मा प्रकृति ड्रामा उसमें आ जाता है, और ज्ञान युक्त भी बनना स्नेह युक्त भी बनना, वो ही बन गया। और उसके आगे और क्या क्या बताया बाबा? सूक्ष्म धागे जो हैं, वो भी मोटे धागे भी सूक्ष्म भी, दोनों से सूक्ष्म धागे हैं। सूक्ष्म धागे हैं अच्छा लगना, और मोटे धागे हैं अच्छा लगना, इच्छा है मोटा धागा, और क्या बखा लगा मुक्त, उड़ने नहीं दे रहे हैं, आज ही उड़ जाएंगे अपन, अभी थोड़ी देर में उड़ जाएंगे। हाँ जी, बार बार बीमार होना भी अपनी गलती है, और हाँ नॉलेजफुल माना दूरांदेशी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री और गुणदान, तो कहेंगे मनसा महादानी, मनसा द्वारा शक्तियों का दान, कर्मों द्वारा गुणों का दान, तो कहेंगे महादानी। और देखिए कितने पॉइंट सबको याद है। और हाँ, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो सहज और सदा विजय का अनुभव करती है। और भावना युक्त है वो अल्पकाल की हैं, थोड़े काल के लिए हैं, और वो हद में है, बेहद में नहीं है। तो बहुत सारी बात है जी। ज्ञानी योगी वो सदा विजयी हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के बाबा के महावा के बिखरे पड़े होते हैं, उनको एक माला में पिरोकर अपने गले में डाल के रखना है ना। जैसे कोई हमको गिफ्ट देता है, एक सोने की चैन अगर दे दे, हीरे की चैन दे दे, तो हम कहाँ रखेंगे उसको? अंदर पहन के रखेंगे, सबको दिखाएंगे, है ना। श्रृंगार करते तो क्या होता है, सबको पता मेरे पास अंगूठियाँ पड़ी हैं चार, बार बार ऐसे हाथ करेंगे, दिखाएंगे, है ना। माला भी पहनी होगी तो बार बार हाथ लगाएंगे उसको, श्रृंगार दूसरों को दिखाते हैं ना। तो बाबा हमको क्या श्रृंगार करते हैं? ज्ञान के सोमान की माला हमको पहन के रखनी है, और वो दिखाने की जरूरत नहीं है। ये चेहरा हमारा दर्पण है, वो अपने आप दिखाएगा, अपने आप इसमें दूसरों को अनुभूति होगी कि वो ज्ञान सारे दिन में हमने कितना अप्लाई किया है, उसको हमने कितना बनाया है अपना। तो प्रैक्टिकल में वो ज्ञान का श्रृंगार दिखाई देगा। बाबा कहते हैं ना, मैं साजन तुम सजने को श्रृंगार करने के लिए आता हूँ, तुमको ले जाऊँगा कहाँ? ससुराल, है ना। अभी कहाँ बैठे हैं? एक मायके में, पियर घर है, और पियर के बाद कहाँ जाएंगे? ससुराल। ससुराल कहाँ है? सुखधाम है। और पियर घर कहाँ है? और ये क्या है? ये भी पियर है, वो भी पियर घर, ये वो है बेहद का पियर घर। चार दिन पहले मुरली में साकार मुरली में था, यह साकार मनुष्य लोग का पियर घर, जहाँ बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों का मधुबन परमानेंट एड्रेस है, ये तुम सेवाओं में वहाँ रहते हैं, और परमधाम है हमारा बेहद का पियर घर, जहाँ हम आत्माएं बाप के साथ रहती हैं, समीप रहती हैं, और सुखधाम है हमारा ससुराल घर। तो ससुराल में कैसे जाना? सजदज करके जाएंगे कि बिना ऐसे चल देंगे? एक है बाराती, एक है साथी, तो वो हमें अपने आप को देखना है कि बाराती बनकर या साथी बनकर, और तीसरे तीसरे जो ढोल बजाने वाले भी होते हैं, जो बाबा कहते हैं महाआरती, घुड़सवार और प्यादे, तो हमको देखना है कि कैसे चलना है। तो बाबा कहते हैं दो प्रकार की जो आत्माएं देखी हैं, एक हैं भावना वाली, जो हैं वो अल्पकाल का अनुभव करती हैं, सर्वशक्तियों का अनुभव करती हैं, बाप के प्यार का अनुभव भी करती हैं, बाबा के जैसे उनको मदद हो रही उसका भी अनुभव करती हैं, लेकिन वो सदाकाल नहीं है, अल्पकाल है, क्योंकि उसमें कमी किस चीज़ की है? ज्ञान की कमी है। तो इस हमारे ब्राह्मण जीवन का जो पुरुषार्थ का जो आगे बढ़ने का फाउंडेशन, वो है ज्ञान। ज्ञान एक शस्त्र है, जिस शस्त्र को हम धार लगा के रखेंगे तो हमारे जीवन में मार्ग में आने वाली बाधाओं को हम सब काट सकते हैं। ज्ञान की विस्मृति हुई तो परिस्थितियां हमारे ऊपर बार कर देगी, परवश हो जाएंगे। और ज्ञान जितना हमारे में सूक्ष्म है, जितना हम बुद्धि में घूमता रहता है, तो योग हमारा स्वतः लगेगा, है ना। योग तो हमारा वास्तव में सारे दिन में लगा ही रहता कहीं ना कहीं, जिसके बारे में ज्ञान होता उसी के बारे में योग लगा रहता है ना। अगर किसी मनुष्य के बारे में चिंतन कर रहा था तो उसके बारे में ज्ञान है, उसकी हम सूरत को मन में देख रहे हैं, उसके गुणों को बुद्धि में चिंतन कर रहे हैं, उसके रहने का स्थान बुद्धि में घूम रहा है, ज्ञान तो है ना उसका भी। तो बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि में होगा तो ज्ञान याद स्वतः आएगी, अपने आप नेचुरल नेचर बन जाएगी। वास्तव में याद करना नहीं पड़ता है, याद तो स्वतः आती किसी की, लेकिन याद कब आएगी? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उससे जो हमको मिलता है उसको हम बुद्धि में रखेंगे। उसने जो हमारे जीवन में बदलाव लाया है, जितने हमको माया के चुंगल से छुड़ाया है, तो उसकी याद क्यों नहीं आएगी? वो अपने आप आएगी। लेकिन उस याद को सहज करने के लिए इस ज्ञान को सूक्ष्म से सूक्ष्म राज्यों को समझने की जरूरत है, और इस ज्ञान को भी बड़े प्यार से समझना है, भारी मन से नहीं, नहीं तो चार पेज की मुरली देख के भारी हो जाती है, इतनी मुरली कैसे याद होगी, सही है ना। हाँ, और जैसे मीठे मीठे बच्चे हो तो बड़ी शांति मिलती, मुरली पूरी होगी अभी, और फिर अगले दिन फिर दूसरी मुरली आ जाती है, फिर तीसरी चौथी, कितनी मुरलियाँ याद ही नहीं रहती। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, करते 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 एक दिन आएगा जो बाबा के मुख से महावाक्य निकलते हैं वो ही हम सब बच्चों के मुख से निकलेंगे, है ना। बच्चा छोटा होता है तो शुरू में थोड़ा उसको सारा पता होता है जो बाप की वाणी क्या है, उसके संस्कार क्या हैं, वो किसके साथ मिलने जाता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे पता होता है। धीरे धीरे जब बड़ा होता है तभी पता होता है ना। तो इस ज्ञान मार्ग की यात्रा में जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे अर्थात हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे मुख से भी वही वाणी निकलेगी जो बाप के मुख से निकलेगी, लेकिन उसके लिए हमें वैसी संगत भी चाहिए, वैसी अटेंशन भी चाहिए, वैसी सावधानी भी चाहिए, बार बार अटेंशन रखने की जरूरत है। तो केवल भावना वशम को योग नहीं करना है, भावना वशम को सेवा नहीं करनी है, उसमें ज्ञान युक्त सेवा चाहिए। ज्ञान है तो बाबा कहते ज्ञानवान बच्चे सर्वशक्तियों की निरंतर सदा अनुभूति करते रहेंगे, घबराएंगे नहीं। ज्ञान युक्त माना ज्ञान स्वरूप आत्मा माना रूठने वाले नहीं, छोटी मोटी बात में रूठ के बैठ जाएं, किसी ने कुछ कहला तो या मारा मन ऐसे ही विचलित हो जाए, नहीं, थोड़ा निष्ठुर बनना पड़ता उसमें। ज्ञान माना समझ प्रैक्टिकल में। अब बाबा के बच्चों को भी समस्या आती है तो बाबा को दिल में हलचल होती है कोई, बाबा के दिल में हलचल होती है कोई, नहीं। ज्ञान है हर उसको पता है, इस अकल्याण के पर्दे भी पीछे कल्याण समाया हुआ है। तो ज्ञान स्वरूप बनने के लिए हमको ज्ञान का चिंतन करा मनन करना है। मुरली से ढेरों पॉइंट बिखरे पड़ते हैं, उसको अलग अलग तरीके से अपने स्वरूप में लाने की प्रैक्टिस करनी है। और वो अपने स्वरूप में लाने की हमको जो विधि है ना, हमको खुद की अपनी अपनी होगी। ऐसा नहीं जिसने सुनाया उसी के अनुसार हम उसी विधि को अपनाएं, नहीं, सीख सकते हैं लेकिन हर एक की विधि अपनी अपनी हो सकती है, क्योंकि हर एक का कर्म क्षेत्र अपना, हर एक के अपने हिसाब किताब हैं, हर एक की अपनी अपनी सोच है, तो हर एक की अपने अपना थिंकिंग है। तो अब मैं अपने तरीके से किसी न किसी विधि से इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में अमल में लाने की विधि ढूंढनी है, उसका प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। और उस पर हम धीरे धीरे हमारी आदत पड़ गई तो नेचुरल नेचुरल हो जाएगी, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा भावुक नहीं बनो, क्या बनो, ज्ञानी बनो, समझ बनो, है ना। नहीं तो आते हैं कई बार घरों से आते हैं माताएं या कोई भी आते साथ में ले आते हैं, चलो वहां जाके मतलब बदल जाएगा, अच्छी भावना वो भी, लेकिन वैसे जैसे बताया ना दो आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया आज की मुरली में, है ना। तो बाबा ने बताया कि टीचर जो लाने वाले भी समझ चाहिए उसको, और जो आ रहा है उसको भी समझ चाहिए। ऐसा नहीं है इतनी क्रिटिकल बीमारियां बाबा साहब ठीक कर देगा और यहाँ के और ही उल्टा हो गया, फिर बोलेंगे बाबा तो ठीक किया ही नहीं। तो केवल भावना नहीं चलेगी, समझ चाहिए, उसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसलिए हर बात के लिए बाबा ने हमको तीसरी आँख दी है, ज्ञान की आँख दी है, समझ दी है, रोशनी दी है। उस रोशनी उस टॉर्च को हमेशा जला के रखना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी हमने बंद कर दिया तो अंधकार तो पहले से जीवन में बहुत छाया पड़ा है, वो अंधकार की छाया हमको मूर्छित कर देगी। इसलिए हर चीज़ की समझ चाहिए। तो बाबा कहते ज्ञानी बनो, भावुक नहीं, ज्ञान और भावना दोनों का बैलेंस चाहिए। ऐसा नहीं है खाली हम ज्ञान और भावना न हो, भावना भी बहुत ज़रूरी है। भक्ति में क्या होता है, भावना तो होती है ना। ज्ञान के आने ज्ञान में आने के बाद कई बार वो आंसू आते ही नहीं है जो भक्ति में आते थे, है ना, सही बात है। तो जो पहले आते थे भक्ति में अब मिल गया तो आंसू सूख गए वो। तो भक्ति भक्ति वाली भावना भी बहुत उच्च कोटि की होती है। तो ज्ञान में भी भावना चाहिए, अर्थात यज्ञ के प्रति भावना, बाबा के परिवार के प्रति भावना, महावाक्यों के प्रति भावना, सेवा के प्रति भावना। तो ऊंच भावना होगी तो ज्ञान हमारा सहज हो जाएगा। तो फिर पुरुषार्थ में जैसे चार चांद लग जाएंगे, जैसे सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो भावना और ज्ञान दोनों को बैलेंस चाहिए, दोनों का बैलेंस। और जीवन में किस चीज़ का बैलेंस चाहिए, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस चाहिए, एक तरफा नहीं। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वो हमारे जीवन को पढ़ते हैं, हमारे से सुनेंगे नहीं, क्योंकि बाबा ने बताया ना आगे जाके भावनाएं वाली आत्माएं तो बेहद वैराग्य के कारण अपने आप आती जाएंगी, लेकिन वो भावना भी उनकी तब बैठेगी जब हम लौकिक में रहते हुए अलौकिकता का बैलेंस रखेंगे। ऐसे नहीं वन में हमें हो गए और घर वालों का ख्याल ही नहीं रखा। जो भी हमारे सामाजिक पारिवारिक नैतिक दायित्व तो बनते हैं उन पर भी हम खरा उतरेंगे तो उनके मन में शाप लगेगी, है ना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। सुबह हमको एक बहन जी सुना रहे थे, बहुत साल पहले एक माता जी आए थे इधर, तो वो घर से ऐसे आ गए बिना बताए आ गए, घर वाले को तो पता था कि इधर ही जा रहे हैं, बहुत पुरानी बात है, तो इधर बाबा से मिले और अगले दिन में वो पहुंच गया, पति परमेश्वर इधर पहुंच गया। ढूंढते ढूंढते ये कहाँ गई, तो देखा तो यहाँ पहुंच गई वो, तो क्लास में बैठे थे, वहीं से उसने चोटी से पकड़ा और खींच के ले आया, और इधर दादी भी बैठे थे बोला आंगन में, तो खींच के ले आया तो देख रही है माता जी भी ये क्या कर रहा है, लेकिन माता जी एकदम टेंशन फ्री, वो भगवान के घर में है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अभी तो ऊपर वाला पति परमेश्वर मिल गया अभी तो वो तो उसको भी गिल्ट कॉन्शियस है जो खींच रहा था, लेकिन संस्कार थोड़े कड़े होते ना, तो फिर बाद में उसको थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि मुझे यह सबके सामने नहीं करना चाहिए था, लेकिन माता तो शांति से रही, फिर ले गया साथ में, फिर बाद में उसको कुछ ना कुछ तो अनुभव हुआ, फिर दो चार दिन बाद उसने फिर माता को भेज दिया, मतलब ठीक है तुम जितने दिन लगाने आके लगा के आओ। तो घर वाले देखते हैं कि अपने नियमों पर कितना पक्के हैं, बदलाव आ रहा है इनके जीवन में, अगर यहाँ ही माता उनको थोड़ा सामना करना शुरू कर देती तो, और बाबा कहते सबसे ज़्यादा सहन किसको करना पड़ता है, बड़ा अनुभव है। सहन तो करना पड़ता है, तो आप कैसे सहन करते हैं, ज्ञान से मान जाते सामने वाले, अब तो, और पहले नहीं मानते थे। और किसने सहन किया बहुत, लेकिन वो सहन करके जो आप यहाँ पहुंचे हैं उसकी जो खुशी है, उसका जो नशा है, उसकी जो ताकत है, वो बहुत बड़ी है वो। इसलिए सहन करना किसके खातिर है, भगवान की खातिर है, है ना। जिसने ठोकरें खाई होती है ना वही ठाकुर बनता है, और जिसने सहन नहीं किया ना आगे जाके लड़खड़ा था वो। इसलिए सहन करना, जीवन में परिस्थितियाँ आना माना हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर परिस्थितियाँ नहीं आ रही हैं तो हमारा पुरुषार्थ की जो लगन है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए परिस्थितियाँ हमें आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करती हैं, खोलती हैं वो। इसलिए परिस्थितियों से घबराना नहीं है, वो तो हमारी दोस्त हैं, मित्र हैं वो, है ना। तो ऐसे बाबा के अनेक प्रकार के महावाक्य, और बाबा ने ब्राह्मणों को कौन सा वरदान दिया था, ब्राह्मणों के खजाने में कोई वस्तु नहीं, वास्तव में वस्तु जो ना वो देवताओं के खजाने में है, लेकिन ये भी बोला बाबा ने, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में कोई शक्ति की कमी नहीं है, अप्राप्त करने कोई शक्ति खजाने की। और ने आज की मूल्य में बाबा ने किया, ब्राह्मणों को कौन सा वरदान है, हाँ जितना भी हॉल बनाते जाएंगे छोटा पड़ता जाएगा, है ना, परिवार भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और क्या बताया बाबा ने, ऑक्यूपेशन कौन सा है, तो अभी हम 21 बातें देखेंगे, और इन 21 बातों के अंदर हमारे ज्ञान के भी अनेक प्रकार के धारणा करने के बिंदु भी हैं, और योग की भी कई सारी युक्तियां हैं, सेवा की भी बातें हैं, परहेज की भी बातें हैं, वो सब देखेंगे, और उसमें सारे मूल्य जितना भी होगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बाबा ने अमृत वेले किसको सकाश देते, बाबा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न तो रहेंगे ये सारे, किसको, दादियों को, महावीर आत्माओं को, और बाबा कैसे सकाश देते हैं, बाबा ने बोला बाबा पर्दे के पीछे से सकाश देते हैं, कितना अच्छा है, जैसे बाबा झांक रहा है अंदर में और देख रहा है बच्चे को, ताकत दे रहा है। तो रोज अमृत वेले अनुभव करना है कि जैसे बाबा मुझे सकाश दे रहा है, बाप दादा आकर जैसे दरवाजे से झांक रहा है ना, बाबा के सामने फोंट होती है ना, देखना झांक रहा है और बाबा मुझे शक्तियां भर रहा है, वो सकाश दे रहा है, प्रैक्टिकल में वो अनुभूति करनी है, और वो अनुभूति करने का टाइम केवल अभी है, और अभी हमको अव्यक्त में ही सारा अनुभव करना है। बाबा ने तो सारा 69 में पहले से हमको सतर्क कर दिया था कि आगे जाकर वही बच्चे अनुभव करेंगे जिन्होंने लंबे समय से अव्यक्त स्थिति बनाने का अभ्यास किया हुआ है, क्योंकि सारा अव्यक्त ही है, जाना कहाँ, वापसी कहाँ, अभी हमारी रिटर्न है, वापसी में अव्यक्त हो गई जाना है, तो उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो अव्यक्त मिलन की अनुभूति करने की प्रैक्टिस हमको बढ़ानी है, तो अमृत वेला जितना भी समय हम करते हैं शक्तिशाली करना है, पौना घंटा एक घंटा करते हैं, फुल ताकतवर होना चाहिए। टाइम की क्वांटिटी भी जरूरी है, लेकिन टाइम के साथ साथ उसकी क्वालिटी कैसी है, एकदम पावरफुल लगे कि चार्ज हो, जैसे 11,000 के 440 का झटका लग जाएगा, पकड़ के रखेंगे एक घंटा आप उसको, थोड़ी देर ही पकड़ेंगे ना चार्ज हो जाएगा। तो बाबा क्या कहते हैं, अमृत वेले मैं तुम बच्चों को, महावीर आत्माओं को सकाश देता हूँ, गुड मॉर्निंग करता हूँ, याद प्यार देता हूँ, यही तुम बच्चों के लिए सारे दिन के लिए डैश है, क्या खुराक, तो सवेरे सवेरे क्या खाना अपने को? खुराक कौन सी? शक्तियों की खुराक आनी। देखना बाबा शक्तियां दे रहा है और मैं उनको चबा रहा हूं, खा रहा हूं, है ना। बाबा रोशनी दे रही है, सारी रोशनी मेरी आंखों में समा रही है। बाबा वरदान दे रहे हैं, जैसे मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ है, वरदानों से संपन्न कर रहे हैं बाबा। अनुभव करना, जैसे अमृत वेले वरदानों की वर्षा हो रही है एकदम। और वरदान कहां? जो डेली मुरली होती है उसी में से वरदान ढूंढो आप। एक परमानेंट 21 वरदान रख लो, रख के याद करके रखो, या 11 वरदान या 31 वरदान, और वो सारे देखना है। जैसे वाहन चार्टर लगा ना, अभी 5 दिन के कौन सा सोमान का अभ्यास है? मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूं। तो महसूस करना, ये पूरी बॉडी जैसे आत्मा में बदल गई है। अब आत्मा दिख तो नहीं रही है, लेकिन महसूस कर लेने से इतनी बड़ी सारी आत्मा ही है ये पूरी लाइट की लाइट ही है जैसे, और सारी परमात्मा की शक्तियां इसमें समाती जा रही हैं, वरदानों की बरसात होती जा रही है। ये पूरा शरीर आत्मा में तब्दील हो गया, लाइट में तब्दील हो गया है। अंग अंग जैसे लाइट का है, अंग अंग जैसे शीतल हो रहा है, अंग अंग जैसे परमात्म शक्तियों से चार्ज हो रहा है, अंग अंग से जैसे परमात्म शक्तियों की किरणें निकल रही हैं। वो विजन क्रिएट करना साथ साथ में, क्योंकि अगर हम मन बुद्धि को बिजी नहीं रखेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे सुस्ती अपना प्रभाव डालेगी, क्योंकि सुस्ती के संस्कार तो जन्म जन्म के है ना, एक दो दिन के थोड़े नहीं है। तो पुराने संस्कारों को काटने के लिए नए संस्कारों के शस्त्र अपने पास चाहिए। तो अमृत वेला कैसे करना है? एकदम अलर्ट हो गए, एक्टिव हो गए, ताकि वो सारे दिन में लगे कि कुछ चार्जिंग हो गई। लेकिन उसके बाद सारे दिन में भी अटेंशन रखनी है, ये नहीं कि अमृत वेला पूरा होगा तो ओम शांति, फिर सारे दिन में अमृत वेला ही समझना भी। नहीं तो क्या होता, अमृत वेला कर लिया, मुरली सुननी, फिर सारे दिन में स्थिति कैसी रहती है हमारी? वो ही कभी कभी शूद्रों की लाइन में चली जाती है। तो जो सवेरे 8 बजे के बाद टाइम 6 बजे तक उतना, उसको भी अमृत वेला समझना। महसूस करना है कि सचमुच बाबा मेरे अंग संग है, वो मेरे लिए आया हुआ है ना। तो पहला पॉइंट है अमृत वेला। कैसे करना है? पावरफुल, शक्तिशाली, अलर्ट हो गए, एक्टिव हो गए, पूरी चार्जिंग हो जाए, लगे क्या कि हाँ कुछ मेरे संस्कारों में परिवर्तन हुआ। पुरानी तरफ, दुनिया की तरफ ध्यान ही ना जाए, बोलने के लिए मन ही ना करे। सवेरे सवेरे अच्छा योग होता तो क्या होता है? बोलने को मन होता है? बिल्कुल नहीं। और बोलना भी नहीं चाहिए अमृत वेले के बाद, तो नहीं तो बोलना ही सिद्ध करता है अर्थात हमारा योग लगा ही नहीं है। एकदम साइलेंस धाम में हम जा रहे हैं, साइलेंस वर्ल्ड है। अमृत वेला क्या है? एकदम साइलेंस वाला, वो उसमें शक्ति है, साइलेंस में बहुत बड़ी पावर है। सारी शक्तियां तो हमारी बोलने में जाती हैं, लेकिन साइलेंस में बहुत बड़ी पावर है। तो अमृत वेला अलर्ट हो गया, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा है बैलेंस बना के रखना है, जैसे आज बाबा ने बताया। कौन सा? वो अपना एक लिस्ट बनानी है, कौन कौन सा, गंभीरता, रमणीकता, ऐसे बैलेंस बनाना। और किसके साथ? लौकिकता, अलौकिकता, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ऐसे बैलेंस का एक अपना चार्ट बनाना। और डेली नया नया काम करना, ऐसा नहीं आज हमने चिंतन कर दिया, कल का छोड़ दिया, अभी अगले संडे को देखा जाएगा, नहीं। हर एक मुरली से डेली डेली नवीनता चाहिए। इसलिए ऑस्ट्रेलिया वालों को, बच्चों को बाबा ने क्या बोला? पहली टाइम आए हैं, जीवन में नया हो गया और नव निर्माण करने में लगे हुए हैं, विश्व का नव निर्माण। बाबा ने कहा ना, बार में बोर्ड लगाते आप लोग, है ना। तो बैलेंस रखना, बैलेंस में क्या होता है? ब्लेसिंग मिलती है, दुआएं मिलती हैं, है ना। तीसरी बात है कंपनी, संग। बाबा कहते हैं डैश शब्द को डैश याद रखना, बताओ कौन सा आज की मूल्य में था? डैश शब्द को डैश, हाँ, सदा शब्द को सदा याद रखना। तो सदा क्या याद रखेंगे उसमें? बाप की कंपनी, कि बाबा निरंतर मेरे साथ में है, है ना। वो मेरे लिए है, उसकी सर्व शक्तियां मेरे लिए हैं, वो मेरा सर्व संबंधी है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा दिल का हाल चाल लेने वाला है। तो उसकी कंपनी में रहना है। जैसा संग होता है वैसा जीवन में रंग लगता है। पिछले संडे की मूल्य में तो होली के 4 बातें बताई थी, कौन कौन सी? होली अर्थात होली माना मुरली बीत गई पिछले संडे की, ऐसे। अच्छा, होली अर्थात एक तो बाप की होली, दूसरा जो बातें होली से होली, लेकिन ज्ञान की बातें कि होली नहीं, होली नहीं करनी उसको, और तीसरा होली अर्थात पवित्रता, चौथा होली अर्थात रंग लगाना। तो रंग कौन सा बताया था बाबा ने? 3 बातें, रंग, बाप के संग का रंग, रूप और खुशबू, 3 बातें बताई थी। तो खुशबू कौन सी बताई थी? पवित्रता की खुशबू, है ना। तो ये बाबा की होली कंपनी में हमको रहना, तो हमारे जीवन में अपने आप ही बदलाव होगा। जो व्यक्ति जिसके साथ रहता है उसका संग का रंग तो लग ही जाता है ना। वो है ना काजल की कोठरी में कुछ एक कहावत ना, अंदर गया तो दाग तो लगेगा लगेगा, है ना। तो बाप के संग का रंग हमको लगता रहेगा। तो ये तीसरी बात। चौथी बात है ड्रामा को याद रखना। आज बाबा ने क्या कहा, ड्रामा, है ना। किसको याद रहती है? जो नॉलेजफुल बच्चे हैं उनको हर प्रकार की नॉलेज, किस किस चीज़ की, आत्मा की भी, परमात्मा की भी, ड्रामा की भी, प्रकृति की भी। तो ड्रामा की नॉलेज कैसे रखे, याद रखेंगे कि ये ड्रामा सबसे बेस्ट ड्रामा ये है, और जिस ड्रामा में मैं कौन हूँ, हीरो एक्टर, हीरो हीरोइन एक्टर हैं, इस ड्रामा में हम सबसे बेस्ट एक्टर हैं। तभी तो हमको चुना बाबा ने। संसार में संसार की आत्मा में वो क्षमता नहीं है, वो योग्यता नहीं है जो हम सब आत्माओं में भगवान ने देखी। बाबा ने भी ऊपर से टॉर्च लेके देखा होगा नीचे कौन कौन से बच्चे मेरे हैं, है ना। जैसे मान लो अगर हम पशु चराने जाते हैं और दूसरे के पशुओं में हमारा पशु मिक्स हो जाए तो ढूंढते हैं ना उसको, है ना। तो बाबा ने देखे सब आत्माएं हैं इसमें, आदि सनातन देवी देवताओं के धर्म की कौन सी आत्मा, बाबा भी टॉर्च लेके ढूंढता और ढूंढते ढूंढते किसी को 1937 से कितना कब से लगा हुआ बाबा, कोई कितने सालों बाद मिला, कोई कितने सालों बाद मिला, कोई कितने सालों बाद मिला, और फिर पकड़ के अपने कुटुंब में बाड़े में लेके आया और फिर बाबा उनकी देख रेख करता है। तो बाबा ने कैसे ढूंढा हम बच्चों को। तो ड्रामा कितना वंडरफुल ड्रामा है ना। इस ड्रामा में हमने सोचा था कि हम यहाँ बैठेंगे ऐसे एक एक को चुन चुन के लाएगा, कोई गाँव से होगा, कोई शहर से होगा, कोई कितनी दूर दूर से आते हैं, कोई सोचा था। जो जिंदगी में हमने शूद्र जीवन में जो सपने देखे थे वो सारे सपने ध्वस्त कर दिए। हाँ, कल एक माता अंडे मारने को वार से वे देखो कितनी दूर दूर से कैसे कैसे आते हैं, काला पानी उसको कहते हैं, है ना। तो कहाँ कहाँ से बाबा के बच्चे आते हैं, कोई जो मन में नहीं था वो चित्त में नहीं था। तो हम सबका ड्रामा कैसा है, वंडरफुल ड्रामा है एकदम। तो शास्त्र बन जाए वो, है ना। तो उसके शास्त्र भी बनाएंगे आगे वाले पॉइंट में बनाएंगे आगे। तो ये हो गया चौथा पॉइंट, कौन सा, ड्रामा का। नेक्स्ट है इक्वल टू बापसमान। हमेशा बापसमान स्थिति में स्थित रहने के प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं करनी, उसमें रहना ही है। अंदर में वो नशा स्मृति रहनी चाहिए, एक जागरूकता बनी रहनी चाहिए कि हम हैं कौन, किस कुल के हैं, भगवान के बच्चे हैं, कुछ ऐसे थोड़े नहीं, लिंबू टिंबू थोड़े नहीं है, किसके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए, जिनको ढूंढने के संसार क्या क्या कर रहा है, कितने धक्के खा रहा है, गणपति को डुबो रहे हैं पानी में फिर भी नहीं मिल रहा है, वो किसको डुबो रहे, हमको डुबोया आज पानी सबने, तो फिर भी ढूंढ रहे हैं बेचारे, कितने पैसे खर्चे हुए, कितना उन्होंने स्थापना की, कहाँ से खरीद के लाए, उसको 56 प्रकार का भोग लगाया, लड्डू भी खिलाए, और फिर भी एक साल बाद बस शांति होगी उनकी भी, एक दिन में खुश हुए और अगले साल फिर उसको अगले साल फिर डुबोएंगे। और हमको बाबा ने कितना सहज कर दिया। तो स्वयं भगवान जो हमको सच्चा सच्चा गणपति बना रहा है, गणपति अर्थात क्या, कितनी विशेषता है, छोटी छोटी आंखों का अर्थ क्या है, पेट का अर्थ क्या है, बड़े सिर का अर्थ क्या है, विशाल बुद्धि, और बड़े पेट का अर्थ क्या है, समा जाना, किसको, बातों को समा लेना, बाहर नहीं बताना उनको, है ना। और छोटी छोटी आंखों का, हाँ, ज्ञान की बारीकियों को समझना है, और वो सूंड से बड़ी बड़ी हर पेड़ को, हाँ, तो हम बड़ी बड़ी परिस्थितियों को ऐसे फेंक दें, है ना। तो चिंतन करना है। तो कौन सी पॉइंट चल रही थी, इक्वल टू बापसमान। तो हमेशा हमको उस स्थिति में रहना, छोटे मोटे समान नहीं है, बड़े बड़े समान में स्थित रहना, और सोचना कि हम हैं वो, और प्रैक्टिकल में है, उसमें संशय नहीं रखना, निश्चय रखना, हाँ, अधिकारी हैं हम, अधिकारी रहेंगे, हैं ही हैं वो, है ना। तो इक्वल टू बापसमान। नेक्स्ट क्या है, फरिश्ता बनना। फरिश्ता बनने के लिए बाबा ने क्या बताया आज, हाँ, जो भी लगाव है, सूक्ष्म धागे और मोटे धागे, तो देखना है कहाँ कहाँ हमारा लगाव है, लगाम की बड़ी सूक्ष्म चीज़ें हैं, कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ लगाव होता है हमारा। सबसे पहले तो हमारा कहाँ लगाव होता है, इस देह से लगाव है, अपने सौंदर्य से लगाव होता है, संस्कारों से लगाव होता है, विशेषताओं से लगाव होता है, समन्वयों से लगाव, चीजों से लगाव है। लगाव के बड़े सूक्ष्म रूप हैं। बाबा ने बताया अच्छा और इच्छा दोनों, एक है मोटी मोटी इच्छाएं और दूसरा है अच्छा लगता है कि मुझे इसी की क्लास अच्छी लगती है, ये भी लगाव है। मुझे इसके साथ ही रहना अच्छा लगता है, ये भी लगाव है। अरे लगाव तो हमको एक ही से करना है, जिससे लगाव होगा वो हमको क्या कर देगा, कल की मुरली में था वो तुमको माला माल, उसी सेंटेंस में एक और भी अक्षर था, लाल कर देगा। हाँ तो माला माल कर देगा, तो हमको उससे लगाव करना है, उसके महावाक्यों से लगाव होना चाहिए। हमको किसी की बैसाखी की जरूरत ना पड़े, किसी के सहारे नहीं चलना। अब स्वयं सहारा दाता अपना सहारा देने के लिए आया हुआ है, उसको छोड़कर हम अपनी समस्याओं का बखान दूसरे से करें तो कैसे होगा। आज की मुरली में था समस्याओं से संबंधित एक पावरफुल महावाक्य था, सर्व समस्याओं का हल डैश है याद। कौन सी याद है? तो याद ही है। कौन सी? बाप की याद, लेकिन उसमें भी कौन सी याद? डैश याद ही सर्व समस्याओं का हल है, है निरंतर है, उसका प्रायवाची शब्द बोलो सदा। अच्छा अ से शुरू होता है अक, अटल, और ठीक ठीक बोल रहे, आसपास ही घूम रहे आप, अटूट अटूट याद ही सर्व समस्याओं का समाधान है। तो समाधान हमको पता है, मेरी समस्या का मुझे पता होता है इसको समाधान कैसे करना है, लेकिन मैं उससे पूछ रहा हूं, उससे पूछ रहा हूं, उससे पूछ रहा हूं, और सभी अपना अपना उत्तर है, क्योंकि डॉक्टर तो सभी आजकल, और फिर मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ, किसका इलाज करूँ, तो पहले इसका करूँगा, उसका करूँगा, इसका करूँगा, इतना टाइम चला गया, फिर लास्ट में बाबा के पास जाऊँगा। अब बाबा बोलेगा इतने दिन बाद आया है तो क्या किया तुम, इतने दिन पहले मुझे याद कर लेता तो अपने मन को असमंजस में डाल देते हैं हम, तो असमंजस में नहीं डालना है। बाबा के महावाक्य से लगाव हो। हाँ सुनना हमको सबका है, लेकिन करना तो बाबा के महावाक्य उनसे, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, फॉलो फादर, ब्रदर सिस्टर नहीं, फॉलो फादर, है ना। तो ये कौन सी बात चल रही थी, कहाँ पहुंचे थे, फरिश्ता। तो अटूट याद रहनी चाहिए। अटूट याद से क्या होगा, जितने भी हमारे बंधन हैं धीरे धीरे, वो इच्छाएं हैं, वो लगाव की रस्सियां हैं, वो जंजीरें हैं, कड़ियां हैं, जो धीरे धीरे टूटी जाएंगी। मन में सूक्ष्म, बाबा ने कहा ना लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, अभी कौन सी आ गई, सोने की जंजीरें, और उससे भी ऊपर डायमंड की जंजीरें हैं, और उनको उतारना मुश्किल होता है। अगर हमको कोई गिफ्ट दे दे एक सोने की चैन, फिर बोलो उतारो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब तक हमारे पास नहीं थी तब तो ठीक है, हमारी नहीं है, और जैसे किसी ने गिफ्ट दी तो सारी हमारी बुद्धि वहीं चली, अब ये मेरी है, उसको देने में फिर क्या होगा। इसलिए दादी जानकी जी बड़े बड़े महंगे अच्छे अच्छे गिफ्ट आते थे, ढेर लग जाता था, और दादी यहाँ गिफ्ट लिए, यहाँ से गए ज्ञान सौर में, सब बांट के आ जाते थे क्लास में, जो दादी को गिफ्ट देते देखते नहीं थे अंदर में क्या है, बांट दी सारी। तो लगाव की रस्सियाँ बड़ी जबरदस्त हैं, जिनको हमने पकड़ के रखा हुआ है, हम छोड़ने नहीं चाहते उसको। तो सूक्ष्म जो जंजीरें जो हमको फरिश्ता वर्ग को उड़ने देते, उड़ती का लगा अनुमान कराती है। तो उड़ने के लिए पहले क्या होता है, बाबा कहते हैं पहले गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे चलने लगते हैं, फिर चलते चलते फिर चढ़ने लगते हैं, चढ़ती कला, चढ़ती कला, तो फिर उड़ने लगते हैं। तो हमको यात्रा आगे बढ़ानी है, नहीं कि बार बार गिरते रहना। तो फरिश्ता बनना है। नेक्स्ट है शुभ भावना, शुभ कामना। आज बाबा ने मुरली में कहा ना, क्या कहा, सबके प्रति शुभ भावना कामना, और सबके प्रति शुभ भावना उससे पहले हमें स्वयं के प्रति, कि सचमुच में हम स्वयं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, या कहीं अपना टाइम ऐसे वेस्ट कर दें कि हमको कर लेना चाहिए था, कर भी सकते थे, सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं, है ना, सबकी मदद भी है, सहयोग भी मिल रहा है, समय भी हमारे पास है, और हम उसको नहीं कर रहे हैं। तो अर्थात अपनी शुभ भावना का हम गला घोट रहे हैं, अपनी हम शुभ भावना की हत्या कर रहे हैं, जैसे हिंसा कर रहे हैं उसमें। तो अपने प्रति भी शुभ भावना, अब मधुबन में आए हैं, अब मधुबन में आकर अगर हम परचिंतन करें, इधर उधर की बातें करें, इतना मुश्किल से तो छुट्टी लेकर आए, तो कितनी हमको चार्जिंग कर लेनी चाहिए, पूरे चारों धाम को सारा कोना कोना अंदर में समा जाना चाहिए, पूरे मधुबन की सारी शक्ति अंदर में समा जानी चाहिए, जितने भी यहाँ सारे फोटो लगे ये सब याद रहने चाहिए बुद्धि में, कौन कौन से हैं, 19 कहाँ से लगे हैं, 20 से लेकर 1970 तक कितने तस्वीरें लगी हैं, इधर कितने लगी हैं, और किसी ने कुछ कहा तो वो सारी बातें याद होंगी, लेकिन हमको ये भी देखना ना, देखो कितना इतिहास, जबरदस्त इतिहास है, देखो सामने छोटे छोटे बच्चे कैसे पंगा ले लिया, लोहा ले लिया संसार से। तो हिस्ट्री हमको ना जागरूक करती है, हिस्ट्री हमारे अंदर के खून जो निष्क्रिय हो गया ना उसको गर्म कर देती है। हाँ, जोश आता है, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए जीवन जीने का, ब्राह्मण जीवन जीने का, क्योंकि ऐसा ज्ञान बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा बाबा बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा परिवार बार बार नहीं मिलेगा, ये यज्ञ थोड़ा ऐसे मिलेगा। अंतिम पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं, यात्रा पूरी होने को है अभी, और इतना कुछ बीत गया है, इस थोड़े समय में हमको इतना कुछ करना है, तो हमको गुड विषय स्वयं के प्रति, शुभ भावना, शुभ कामना स्वयं के प्रति रखेंगे, दूसरों के प्रति स्वतः होगी। अगर हमारी स्वयं के प्रति नहीं है तो दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना नहीं होगी। अगला हिम्मत रखना है। हिम्मत का शब्द आज बाबा ने कहां बोला मुरली में, हाँ, दादियों से मुलाकात। हिम्मत रख के संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, और हिम्मत वाली आत्माएं जो निमित्त आत्माएं, उनको बाप दादा पर्दे के पीछे से सकाश देते हैं। कैसे देते हैं, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और खुराक खिलाते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में हिम्मत रखनी है, हिम्मत कभी नहीं हारनी, भले बार बार हम असफल हो रहे हैं, खुशी नहीं खोनी कभी भी। खुशी का स्लोगन किसका है, गुलजार दादी जी का, कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए। खुशियों का संसार मिल गया, खुशियों का भंडारा मिल गया, खुशियों का खजाना मिल गया, खुशियों का सागर मिल गया, ऐसे खुशकिस्मत बन के बाबा ने कहा तुम बचे, तो हम खुशी को जाने क्यों दें। तो हिम्मत रखनी है, भले जितनी मर्जी भी असफल हो जाए कोई बात नहीं, भगवान ने हमको चयन किया हमारा, तो ऐसे थोड़ा चयन किया उसने, तो हिम्मत नहीं हारनी इस ब्राह्मण जीव में, और हिम्मत अंत तक रखनी है, कदम कदम पर हिम्मतवान बन के रहना है। दादी ने ऐसे थोड़ी हिम्मत रखी, हिम्मत के कारण तो यज्ञ यहां तक पहुंचा ना, अगर उसी समय परिस्थितियों को देखते कि इतनी बड़ी परिस्थितियां आ रही हैं, सब तरफ से मुसीबतें मुसीबतें आ रही हैं, कौन चलेगा पता नहीं क्या होगा, तो हम यहां होते आज। तो देखो एक एक आत्मा की हिम्मत पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बाबा का परचम फहरा दिया, बाबा का झंडा लहरा दिया। आज देखो संसार की आत्माएं कैसे कैसे आ रही हैं, आज देखो संत सम्मेलन में आ रहे हैं जो महामंडलेश्वर हैं, जो विद्वान हैं, पंडित हैं, साधु संत हैं, उनके मुख से क्या क्या निकल रहा अभी बाबा के प्रति। नहीं तो एक जमाने में क्या होता था, सुनने थे तक नहीं थे ब्रह्मा कुमारियों का नाम, दरवाजे बंद कर लेते थे, और अभी आने को तरस रहे हैं। तो हम तो कहाँ कितनी यात्रा तय कर चुके हैं और कौन से मोड़ पर पहुँच रहे हैं, तो हमको इसका कितना फायदा ले लेना चाहिए। तो हिम्मत नहीं हारनी है। नेक्स्ट है कई बातों को इग्नोर करना है। इग्नोर करने के लिए बाबा ने मुरली में क्या कहा आज, शीलू बहन जी ने भी सुनाया था, क्या, खाने पीने वाली चीजें, क्योंकि ये जीवन बड़ा कीमती है, अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी खाते रहेंगे तो बीमारियां हमको पकड़ के रख लेंगी, इसलिए अमूल्य शरीर है, तो वो चीजें सारी इग्नोर करनी है। एक तो है स्थूल खाना, दूसरा है सूक्ष्म, हम क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं एनर्जी जा भी रही है तो एनर्जी आ भी रही है, आंखों से भी हम भोजन करते हैं। अगर हम किसी को आत्मिक दृष्टि से देख रहे हैं अर्थात आंखों को शक्तिशाली खुराक दे रहे हैं, आंखों का हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, और ये लंबे समय की प्रैक्टिस है, एक दिन की नहीं है, स्वयं ब्रह्मा बाबा ने कितनी प्रैक्टिस की, और यही हमारे पुरुषार्थ का तो पहला केंद्र बिंदु है, जो मजबूत होगा तभी तो हम आगे चल पाएंगे। तो ये हमको प्रैक्टिस करनी है, कौन सी, आत्मा की इग्नोर, तो वो सब बातें इग्नोर करनी है जहां से हमारा पतन हो रहा है, शरीर का चिंतन, शरीर को सजाने संवारने में हमारा सारा ध्यान चल रहा है, या शरीर की जो संदर्भ वो चीजें आवश्यक चीजें तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक इच्छाएं या अनावश्यक चीजों का संग्रहण करना, अच्छा लग रहा है ये भी अच्छा लग रहा है, उसके कपड़े भी अच्छे, इसके कपड़े भी अच्छे, अब लेने देने है नहीं मुझे, और फिर भी पूछ रहे हैं ये जैकेट कितने की आई, तो जब लेनी नहीं अपने को तो पूछने का औचित्य क्या है, पहले भले 10 हमारे पास होंगी लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, तो हमारी एनर्जी चली जा रही है, बोल से भी जा रही है, आंखों से भी जा रही है, सोचने से जा रही है, अर्थात हमने अपने अंदर की वृत्ति को बदला ही नहीं है। तो वो सब बातें इग्नोर कर देनी है जो हमारे ब्राह्मण जीवन के सुख को नष्ट करती जा रही है। अगली बात है जिम्मेवारी समझनी है, है ना। पहले जिम्मेवारी कौन सी है, बाबा ने, तो बाबा कहते तुम बच्चों को बेहद की जिम्मेवारी दी हुई है। कौन सी जिम्मेवारी है? सबसे बड़ी जिम्मेवारी है अपने आसपास के वातावरण को शक्तिशाली बनाने की जिम्मेवारी। दूसरी सब बातें बाद में है, क्योंकि जो भी हमारे आसपास संबंध संपर्क में आएगा सबसे पहले वो हमारे आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है, हमारे बाद होगा। जैसे भी अगर ऐसे कोई हॉल में आता है हम सबको बाद में देखेगा, पहले एकदम उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? वातावरण पर जाएगी। तो जहां भी हम रहते हैं उस वातावरण को हमको शक्तिशाली बनाना है। मधुबन में रहते हैं तो मधुबन में वातावरण को शक्तिशाली बनाने की जिम्मेवारी है। घर में रहते हैं तो घर भी बाबा कहते सेवा केंद्र है, उसको भी शक्तिशाली बनाने की जिम्मेवारी है। वो आपको एक सेवा केंद्र के रूप में सौगात मिली है। जो भी लौकिक परिवार है वो आपके क्या हैं? स्टूडेंट है, समझो उनको, उनकी सेवा करनी है। कैसे? प्रैक्टिकल में अपनी चलन से, ज्ञान सुनाने से नहीं, चलन से सुनाने। थोड़ा मीठे बोल, मीठे मीठे बोल, थोड़ा प्यार उनको दें, उसी के लिए तो सारा संसार तरस रहा है। थोड़ा हम शांति से बात करें, थोड़ा मुस्कुरा के बात करें, है ना। तो जिम्मेवारी समझनी है। नेक्स्ट है अपने खुशनसीबी को याद रखना है। आज बाबा ने कहा ना, कौन है खुशनसीब? खुशकिस्मत किसके साथ हैं? हाँ हाँ बच्चे। और आज की मुरली में बाबा ने किसको संबोधन किया था? ऑस्ट्रेलिया वाले। तो क्या क्या गीत गाते रहो? पाना था सो पा लिया, भटकने से बच गए, इतने बड़े परिवार में आ गए, तो पाना था सो पा लिया, ये खुशनसीबी हमको याद रखे। पाना था सो पा लिया और खाना था सो भी खा लिया। खा लिया ये खा रहे हैं, तो ज्ञान को खाते रहना है अपने को अंत तक, है ना। ज्ञान के नए नए व्यंजन तैयार करने हैं, है ना, ज्ञान के लड्डू तैयार करने हैं, ज्ञान की बर्फी तैयार करनी है। कैसे तैयार करनी है? अच्छी अच्छी बातें सोच के। ये बुद्धि कैसी है? कढ़ाई की तरह है ना, है ना। इसके अंदर क्या डालना? शक्तियों सर्वशक्तियों का घी डालना, और क्या डालने का? बीच में क्या डालेंगे? हलवा बनाना तो क्या क्या डालते हैं? हाँ सूजी, कौन सी सूजी डालेंगे? ज्ञान की सूजी डाल दो, और योग की आग जला दो उसमें। आग तो जलानी पड़ेगी ना, योग की आग जला दो। फिर क्या करना पड़ेगा? उसको पॉइंट को हिलाते रहो, देखते रहो कितने पॉइंट डाले बीच में इसमें बुद्धि में। और फिर बाद में उठेंगे तो यहां से धुआं निकलेगा, हलवे का खुशबू आएगी, है ना। तो ज्ञान का चिंतन करते रहना है। तो कहां पहुंचते हम? खुश नसीब, है ना। तो हम कितने खुश नसीब है ना। थोड़ी सी आत्माएं हैं जो सच में, जिनको वास्तविक खुशी है, सच्ची खुशी है, और संसार में खुशी के लिए तरस रहे हैं बेचारे, है ना। नेक्स्ट है लव। बाबा से लव चाहिए। और लव कैसे बढ़ेगा? हाँ, जिससे जो मिलता है बाबा कहते उसको रोज सवेरे याद करो कि हमको बाबा से क्या क्या मिला है। वो पुराना जीवन और ये जीवन तुलना करो। अगर हमारा ये जीवन नहीं होता तो हमारे जीवन में क्या हशर होता? कोई पहचानने नहीं आते, चेहरे हमारे ऐसे वैसे हो गए होते। ज्ञान में आने के बाद एक अलग सी रौनक आ जाती है, उम्र थम जाती है, है ना। जितने भी कुमार कुमारियां या कोई भी है अदर कुमार, जैसे लगता है हम वहीं के वहीं खड़े हो गए एकदम। हमको तो कभी फील ही नहीं होता कि हम बड़े हो गए हैं। जब लोग होते ना अंकल, तो थोड़ा लगता है अंकल हो गया हम तो हम तो लगता है हम ऐसे ही बच्चे तो बाबा की प्राप्तियों को याद करना, तो लव बढ़ेगा उसका। प्राप्तियों का चिंतन करना उसका, उसकी ज्ञान का चिंतन करना है, है ना। तो लव हमारा बाबा से बना रह जाइए। नेक्स्ट है मैं और मेरा। दो शब्द आज बाबा ने कहा, क्या दो शब्द? इनसे मैं बाबा की, बाबा मेरा। ये है, अगर ये शब्द याद रहेंगे तो सहज याद होगी, स्वतः होगी, याद होगी, सहज योगी बन जाएंगे। मैं गिराने वाला भी तो मैं उड़ाने वाला भी है, मेरा याद आए तो मेरा बाबा, तो मैं और मेरा। इसका क्योंकि सारे दिन में ये दो शब्दों की इर्द गिर्द हमारी मन बुद्धि घूमते रहते हैं, तो उनमें दो में क्या समा जाए? अलौकिकता, रूहानियत, शक्ति, पवित्रता समा जाए। तो मैं और मेरा, जब भी हम जीवन दिन में बोले मैं, तो याद आना चाहिए मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, भूत आत्मा नहीं ठीक है, मास्टर भूतनाथ है ना, तो वो सारे सम्मान आने चाहिए, याद आने चाहिए, है ना। नेक्स्ट है नथिंग न्यू की स्मृति। आज बाबा ने मुरली में बोला नथिंग न्यू, कहाँ बोला था? हाँ, दादियों को सारे अनुभव करा दिए नथिंग, तो जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, नथिंग न्यू, ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, कलप पहले माफिक हो रहा है। हम कलप कलप की विजयी, बाबा ने याद बताया कि तुम बच्चे याद रखो कि मैं कलप कलप की अधिकारी आत्मा हूँ, जो आपने बताया था सबसे पहले पॉइंट। तो क्या याद रखना है, हम सदा के क्या हैं? विजयी आत्माएं हैं, कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। तो मैं और मेरा, नथिंग न्यू। नेक्स्ट है ओ ऑक्यूपेशन, अपने याद रखना है। तुम बाबा कहते तुम्हारा एकमात्र ऑक्यूपेशन कौन सा है? लक्ष्मीनारायण तो बाद में बनेंगे, अभी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, यही हमारा एक। तो विश्व परिवर्तन की अलग अलग विधियां खुद ही ढूंढनी है कौन कौन सी। नेक्स्ट है प्रकृति को, प्रकृति का भी हमको समझ चाहिए, ये भी देव एक प्रकृति है। तो प्रकृति सर्दी गर्मी मौसम जो भी है, मौसम हमको प्रभावित न करे, हर मौसम का हम आनंद लें, मौसम के प्रति हमारा कोई भेदभाव नहीं हो, मौसम के प्रति कोई हमारे ऐसे छोटे मोटे विचार ना हो, कोई उसमें कटाक्ष वाले विचार नहीं हो, चाहे सर्दी या गर्मी है सब अच्छा है। नेक्स्ट है क्वालिटीज, सबकी विशेषताएं देखनी है। बाबा ने कहा मेरा हर एक बच्चा श्रेष्ठ है, तो उनकी श्रेष्ठ वृत्ति होनी चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए। अगर एक एक बच्चे के शास्त्र बनाए तो कितने दिन लग जाएंगे, तो कितनी क्वालिटी, तो हर एक की विशेषताएं देखनी है। नेक्स्ट है रेस्ट करना। कहां बाबा ने रेस्ट के लिए किसको बोला था? ऑस्ट्रेलिया वालों को। क्या बोला? कि जैसे आप ड्यूटी पर जाते हो तो घर में जब टाइम मिलता है तो घर की याद आती, तो किस लिए? कि जाके रेस्ट करेंगे। तो बाबा ने कहा सारे दिन में जब भी आपको मौका मिले तो रेस्ट करने आ जाओ मेरे पास, तो हमको वहां का अनुभव करना कि मैं बाबा के पास में रेस्ट में बैठा हुआ हूं। नेक्स्ट है साकाश देते रहना, जब भी मौका मिले छोटा मोटा एक सोमान का अभ्यास करके 10 मिनट का, 5 मिनट का, 2 मिनट का साकाश देते रहना, ताकि हमारा मन बुद्धि बिजी हो जाए। नेक्स्ट है दिल तख्त को रिजर्व करना है। आज बाबा ने कैसे बोला? दिल तख्त को रिजर्व कर लिया है, है? नेक्स्ट है उमंग उत्साह के पंख हमेशा मजबूत रहने चाहिए, और विजय का तिलक अंत में। कितनी बातें होगी? 23 होगी। तो ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं चिंतन करते करते। मुरली को ये सारा ABCD ऐसे किया हुआ, सारे मुरली के उसी में से महावाक्य याद करने का तरीका है। तो उसको रिवाइज करते रहेंगे ना, तो याद भी सहज रहेगा, वो हमारा संस्कार भी बन जाएगा, एक नए तरीके से ज्ञान को चिंतन करने की आदत पड़ जाएगी। ओम शांति।
तुझ में स
बने जहां में तुझसा, बने जहां में तुमसा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको, है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको, पल भर का वह भी झूठा, पल भर वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां, तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा